नमस्कार आदाब सत श्री अकाल श्रोताओं, मैं रफी साझा मंच मोबाइल वाणी से आज आप लोगों के बीच फिर हाजिर हूँ। मेरे साथ सीधे जुड़े हैं कालू राम डाइकिन एसी नीमराना से। और अभी जिस तरीके से राजस्थान में वेज कोड आ गया है और वहां की राज्य सरकार जो है वेज चेंज करने की बात कर रही है, कुछ बदलाव श्रम कानून में चल रहे हैं, तो इसको लेके क्या रणनीति है और क्या कहना है इस बारे में आप?
देखिए, सच तो ये है कि ना बीजेपी सही है ना कांग्रेस सही है, ये एक ही थाली के दो चट्टे बट्टे हैं। ठीक है जी, ना पक्ष मजदूरों का कांग्रेस सरकार ले रही है ना बीजेपी ले रही है, मजदूर को तो दोनों ही उसमें ऐसे हो रहा कि दो फाटों के बीच में किसाई हो रही ना, ऐसे हो रही मजदूरों की, तो मजदूरों को तो कहीं भी नहीं है। एक तरफ कांग्रेस सरकार कहती है कि मजदूर पक्ष में, लेकिन अंदर ये कहीं ना कहीं बीजेपी की तरह है, मजदूर को लपेटने का काम कर रहे हैं। जैसे ये चाह रहे कि जैसे जैसे हमारे जैसे थोड़े बहुत बहुमत आए, लेकिन कुछ जो उद्योगपति है उनकी सरकार बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, कुछ उद्योगपति उनको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, लेकिन पिसना मजदूर को ही है, मरना मजदूर को ही है। तो ये तो हम
लास्ट टाइम जब मैं नीमराना आया था और डाइकिन का आंदोलन चल रहा था और पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया था,
हाँ जी।
बाद क्या स्थिति है और डाइकिन अब क्या कर रही है, क्योंकि आप वहाँ यूनियन के हैं, डाइकिन यूनियन में हैं, आप यूनियन नहीं बन पाई थी, और उस उन सबको लेके क्या चल रहा है अभी?
उन सबको देखिए, 56 लोग जो हमारे कंपनी ने सस्पेंड कर दिए, जिसमें से लगभग 30 के समथिंग लोग जेल में रह के आए हैं, 50 दिन से ज्यादा जेल काट के आए हैं। और कितनी ही बार हम राजस्थान सरकार को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, स्टेट लेवल पे धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेटर डाल चुके हैं, सेंट्रल लेवल पे भी डाल चुके हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। स्थानीय लेबर मिनिस्टर है, उनको पता नहीं कितनी बार ज्ञापन दे चुके, कितनी बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं सुन रहे, क्योंकि वो सब भी एक तरह से मैनेजमेंट और ये जो उद्योगपति हैं इनके हाथों बिक चुके हैं वो लोग भी, तो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बाकी मजदूर का है, जा रहे हैं कोर्ट में, तारीख पे तारीख लग रही है, ना कुछ लेबर कोर्ट में, श्रम विभाग में ना कहीं कोई अफसर बैठ रहा है, ना कहीं सुनवाई है, ना मंत्री जी सुन रहे हैं, ना सीएम साहब सुन रहे हैं, कहीं नहीं सुन रहे हैं, बस एक खाना पूर्ति हो रही है। कहीं भी जाते हैं तो ये बोला जाता है कि स्टाफ नहीं है, करते हैं ज़्यादा करेंगे दो कोई भर जाएंगे, प्लांट उखाड़ लेंगे, ये उखाड़ लेंगे।
उनको आप भी उस आंदोलन में शामिल थे और क्या आपको भी जेल जाना पड़ा?
नहीं, जेल नहीं जाना पड़ा, पर मेरे पास, मेरे ऊपर भी 8-10 मुकदमे हैं, मेरे घर पे काफी बार पुलिस आई है और कई बार सर्च ऑपरेशन चलाया। एक बार तो पुलिस लेके भी चली गई थी मेरे थाने में, बट पता नहीं कैसे कैसे हम छूट के आए वहां से।
हाँ जी, जो आने वाला ये वेज कोड है राजस्थान का, स्पेशली नीमराना उसी में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से लड़ाई मुश्किल होने वाली है और मजदूर का अधिकार मिलना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार का श्रम कानून है जो 44 कोड को महदूद करके 4 कोड में बदल दिया गया है, उससे एक आम मजदूर को एक सरल भाषा में अगर आप बताना चाहें किस तरीके का नुकसान होने वाला है?
देखिए, मजदूर को नुकसान तो शुरुआत से, जब से जापानी जोन बना है तब से यहाँ स्थानीय लोगों पे पाबंदियां हैं 200 किलोमीटर के दायरे में। जितने भी यहाँ के आसपास के लोग हैं, लोकल 200 किलोमीटर के एरिया के, चाहे वो आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, उनको सर्विस नहीं दी जाती है। उनको तो ऐसे व्यवहार किया जाता है कि जैसे वो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, आतंकवादी हैं। ठीक है साहब, दूसरा ये है कि मजदूरों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। जैसे अंग्रेज दमन कर रहे थे, उस हिसाब से उद्योगपति दमन कर रहे हैं, यहाँ की सरकार उनका सपोर्ट कर रही है। और अंत में जैसे अंग्रेजों के सामने हम लोग आमने सामने हुए थे, तो वही आमना सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मजदूर के पास क्या है? मजदूर के पास नौकरी वो दे नहीं रहे, अच्छे से तनख्वाह वगैरह कुछ दे नहीं रहे। जितनी उनकी फ्रीडम थी, आज़ादी थी मजदूर की, वो सब छीन ली है उनने। नए नए वेज कोड ला के, श्रम चार नई श्रम संहिता ला के मजदूर के अधिकार को खत्म कर दिया, तो मजदूर क्या करेगा? अब तो लास्ट एक ही ऑप्शन है, तो सुनेंगे मजदूर की तो ठीक, नहीं तो आमने सामने जो होगा, मजदूर को तो वैसे भी मरना है, वैसे ही मर रहा है, क्या करेगा मजदूर।
तो ये 200 किलोमीटर के जोन में किस तरीके की पाबंदी लगाई गई है जापानी जोन नीमराना में, किस तरीके की पाबंदी है, और क्या जो जापानी जोन में जो लोग काम कर रहे हैं वो सब परमानेंट हैं या ठेके ठेके के माध्यम से रखे गए मजदूर साथ?
नहीं नहीं, अगर देखिए मैं अगर डायरेक्ट की बात करूँ तो दो बार लगभग 1800 मजदूरों को दो बार करके निकाल चुके हैं, 2013 में और 2018-19 में, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि दो महीने तीन महीने काम कराया, 5 दिन के लिए घर भेज दिया, उसको पता भी नहीं है, उसका कोड चेंज कर दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज कर दी, बीच में उसका एक महीने का पीएफ काट दिया, उसको पता भी नहीं है, कोई सुविधा भी नहीं है उसको, लोग 5-5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन तब देखा जाता तो जब भी चेक किया जाता तो उनको ये चेक किया जाता कि भाई ये तो 4 महीने से काम कर रहा है, 5 महीने से काम कर रहा है। रही बात ये कि परमानेंट नाम मात्र के परमानेंट है, किसी कंपनी में 20 हैं, किसी में 50 है, किसी में 100, जहाँ पे हैं तो उनको इस तरह से डरा धमका के रखा जाता जैसे गुलाम है वो।
तो ये जो श्रम कानून आएगा और एक आम मजदूर को क्या जानकारी लग रही है कि पहले के जो अधिनियम थे वो भी लागू नहीं हो रहे हैं, और ये जो नया श्रम कानून लेके चाहे राज्य सरकार आ रही है चाहे केंद्र सरकार आ रही है, तो इनमें इनमें भी क्या मजदूर की वही हालत है जो पुराने श्रम कानूनों में थी, या स्थिति और बदतर होनी है, क्या लग रहा है?
देखिए देखिए मैं एक सरल भाषा में बताऊं तो सरल भाषा में ये है कि अंग्रेजों से पहले जो राज था उसमें हम सांस ले रहे थे, और अंग्रेजों के टाइम जो आया तो सांस लेना दूभर हो गया हमारा। तो यही हो रहा है कि पहले जो श्रम कानून थे उसमें कम से कम मजदूर अपने हक के लिए लड़ रहा था, कहीं ना कहीं उसको रैली करने की, धरने प्रदर्शन करने की, अपने आवाज उठाने का, अपने अधिकार के लिए लड़ने की थोड़ी छूट थी। अब वो सेम अंग्रेजों वाला सिस्टम हो गया, अब मजदूर ना अपने हक के लिए लड़ सकता, ना बोल सकता है, ना कुछ कर सकता है, उसकी आज़ादी क्या, उसको तो बेड़ियों में बांध दिया गया अंग्रेजों की तरह।
तो अभी तो सरकार, राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं दिया जाएगा, और इम्प्लॉय जो हैं उनको पे स्लिप वर्कर को देना, मजदूर को देना अनिवार्य होगी, और अगर उसने कोई कंपनी से या कुछ पैसे लिए हैं या उसका वेतन है तो 50% से ज्यादा वेतन काटने का अधिकार नहीं होगा। अगर 50% से ज्यादा वेतन काटते हैं तो उनको जो है श्रम विभाग में सूचना देनी पड़ेगी 10 दिन पहले। तो ये स्थिति क्यों ऐसी है कि एक तरफ सरकार इस टाइप का दावा कर रही है और जमीन जमीनी स्तर कुछ और है, जमीन की खबरें कुछ और आ रही, क्या लग रहा है?
देखिए देखिए मैं बता रहा हूँ, सरकार जो चलाते हैं वो ऊपर जो अफसर लोग हैं वो ऊपर से एक आदेश दे देते हैं, वो ऊपर के जो मंत्रिमंडल में या सरकार में जो लोग बैठे वो नीचे वाले को बोल देते हैं, नीचे वाले उनके नीचे वाले को बोल देते हैं, और कंपनियों के साथ डायरेक्ट उनका मेल मिलाप होता है, तो वो सच जो होता वो नहीं दिखाया जाता, वहाँ पे नहीं बताया जाता। वो आते हैं उनकी मिठाई पानी का सारा इंतजाम कर दिया जाता है, लेकिन जब डॉक्यूमेंटल कुछ काम होता है तो डॉक्यूमेंट में दिखाया जाता है कि ये सारा काम सही हो रहा है, ये सब सही हो रहा, लेकिन हकीकत में अगर कोई ऐसा जिम्मेदार कोई सरकार में आदमी कोई ऊपर जो बैठा है और वो जमीनी लेवल पे आके कहीं चेक कराए तो हकीकत पता चलता है। तो ये वो ऊपर से आदेश दे देते हैं, नीचे वाले खानापूर्ति करके भेज देते हैं, तो सख्त आदेश ये मिलता है उनको कि किसी के खिलाफ कोई भी गलत वो नहीं देना है आपको, सब कुछ जो मैनेजमेंट चाहता है वही होता सरकार की तरफ से।
तो क्या ये जो पे स्लिप देने की बात है, तो आप लोग इतने दिन काम किए हैं डेकिन में, जो ठेका मजदूर है कितने लोगों को पे स्लिप मिलती है आप?
देखिए पहले हम ट्रेनिंग पे लगे थे, हमें अवेलेबल होती थी पे स्लिप, अभी उससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट चलते उनको नहीं मिलती थी, बीच में उन्हें स्टार्ट कर दिया, और अभी ताजा हालात तो ये है अगर किसी को मिल गई पे स्लिप या कुछ मिल रही है, कहीं आप पूरे राजस्थान में नहीं मिल पा रही है, कुछ ही मिल रही है, जैसे कि जापानी जोन कुछ कंपनियां, कोरिया जोन की, ऐसे इंडियन जोन में तो बहुत बुरा हालात है, जो बाहर की विदेशी कंपनियां हैं उनमें कुछ परसेंट मिल रहा है, लेकिन उसमें भी मिलना ना मिलना बराबर है, किसी का पीएफ सही से नहीं कट रहा है, किसी के मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, किसी का पीएफ क्या कट रहा है, किसी का अकाउंट नंबर क्या है, तो ये सब प्रॉब्लम चल रही है उन लोगों के साथ।
नहीं तो ये क्या लगता है कि मैनेजमेंट जानबूझ के ऐसे उलझाने वाला काम करता है कि मजदूर इसमें उलझा रहा है, क्या लगता है आपको, क्या कहें?
देखिए मैनेजमेंट का साफ निर्देश होता है ठेकेदारों को कि आप ये ट्राई करो कि कुछ प्रॉब्लम आए तो सामने कौन बोलता है, अपने अधिकार के लिए कौन आवाज उठाता है, जो अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है उसी को बोल दिया जाता है कि कल से तुम नहीं आना, तुम्हारे लायक काम नहीं है यहाँ पे। तो उसको देख के भी ना पे स्लिप से कोई मतलब नहीं, पे स्लिप में कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो मजदूर उसको सोल्व नहीं करा सकता, सही नहीं करा सकता। उस पे स्लिप को कराने के लिए बार बार कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता तो उसको ना कोई टाइम मिलता जाने के लिए, और अगर वो चला भी जाता है तो कई कई दिन उसको घुमाया जाता है, फिर उसको ये बोला जाता है कि अगली बार आएगा। अगर एक दो बार ज़्यादा घूम गया वो तो मैनेजमेंट सीधा उसको बोलता कल से मत आना, तुम्हारे लायक काम नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको देखते देखते बाकी लोग भी चुप हो जाते हैं।
तो अभी जो दावा किया जा रहा है कि ओवर टाइम डबल रेट से मिलता है, तो वास्तविक स्थिति क्या है? बहुत सारे नीम राणा के साथी बोल रहे हैं किसी को डबल रेट से नहीं मिलता है, सिर्फ कहा जाता है, क्या है स्थिति और कैसे साबित करेगा कि मजदूर के उसने ओवर टाइम किया और उसको सिंगल रेट से मिला पैसा, ये कैसे वो साबित करे?
देखिए अब ये मैटर सारा आ रहा है, अगर पे स्लिप 100% लागू हो जा रही है तो उसमें ओपनली आ जाएगा कि इसने कितना ओवर टाइम किया कितना नहीं किया, ठीक है। और रही बात ये कि ये सच है, कुछ एक दो चार कुछ कंपनियों को छोड़ के ओवर टाइम सभी को सिंगल दिया जा रहा है, ठीक है। जो कंपनियां थोड़ा वो दिन में यूनियन का मैटर ऐसा कुछ चल रहा है वो सब तो थोड़ा वो डबल करके दे रहे हैं, बाकी हर जगह कहीं सिंगल है तो कोई फैसिलिटी नहीं है, कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल को बोला जाता तो कहीं उसको बस नहीं दी जाती, कहीं खाना नहीं दिया जाता है, ओवर टाइम तो बहुत दूर की बात है। भेदभाव ऐसा हो रहा है कि बस जो है परमानेंट के लिए है, कैंटीन है परमानेंट के लिए है, कॉन्ट्रेक्चुअल कोई आवाज़ उठाता है तो उसको ये बोला जाता है कि गेट बंद हो गया तेरा, तो पीएफ तो बहुत दूर की बात है, जब एक कॉमन जो फैसिलिटी नहीं दी जा रही उसको तो पीएफ के लिए कहाँ बोलेगा वो।
तो आने वाले दिनों में श्रम कानून लागू होने में के बाद, चाहे वो राज्य स्तर का कानून लागू हो रहा हो या केंद्र सरकार का, किस तरीके से अंतर देखते हैं केंद्र सरकार के कानून में और जो राज्य सरकार जो अभी वेज कोड लेके आ रही है राजस्थान का, जिसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा भी कर रहे हैं, तो किस तरीके का अंतर देखते हैं दोनों कानूनों में?
देखिए अंतर कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे है, जो सेंटर चाहती है वही स्टेट लागू कर रहा है। अगर इनको विरोध करना था तो सीधा केरल की सरकार की तरह विरोध करते ना, अपने यहाँ पे लाने की जरूरत ही नहीं थी कि हमारे जो पुराने श्रम कानून जो हमारे चले हुए हैं काफी सालों से, तो हम तो उन्हीं पे एग्री हैं, हमें वही कानून चाहिए, हमें नए कानून नहीं बनाने हैं। जब राज्य सरकार ने बोल ही दिया कि हाँ हम एग्री हैं बनाने के लिए, तो ये तो हर आदमी समझता है कि राज्य सरकारें कहाँ केंद्र सरकार से ऊपर जाती हैं, कहीं नहीं जाती, ये तो दिखावा है, सामने कुछ दिखाया जाता है पीछे से कुछ किया जाता है।
तो कितना मुश्किल होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये कानून की एक अलग भाषा है, एक अलग पेचीदगी है उनके शब्दों में, ये आम मजदूर को समझाना कितना मुश्किल होने वाला है और यूनियन कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि यूनियन बनाना भी अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो क्या लगता है आपको?
देखिए सच तो ये है कि आगे से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यूनियन नाम का जो शब्द है वो खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ये सब हो रहा है, और जिस तरह प्राइवेट कंपनियों में बड़ी कंपनियों में कहीं भी यूनियन के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, उनको बाहर करा जा रहा है, ट्रांसफर करा जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है, और 307-333 तक की ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जा रही हैं, तो कुछ है ही नहीं। और लास्ट में यही आ जाएगा, आप जिस दिन आ रहे हो उस दिन का पेमेंट लेके जाओ और आगे जिस दिन आओगे उस दिन का आप कैश पेमेंट ले जाओ, तो इतनी बुरी कंडीशन हो जाएगी मजदूरों की, तो पर क्या पूछो, मतलब उनके तो भूखों मरने की नौबत जो है उससे भी बेहतर हो जाएगी, सामने बोल नहीं सकता, नौकरी मिलेगी नहीं तो क्या करेगा वो।
तो क्या लगता है कि मजदूर ही यूनियन नहीं चाहते हैं? अगर मजदूर यूनियन के साथ हैं या उनकी एक बहुत बड़ी तादाद यूनियन के साथ है, स्ट्रेंथ है, तो वो आवाज क्यों नहीं निकल रही है और सरकार पे दबाव क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या लगता है कि मजदूर
सरकार
स्थिति को जो है वो मान चुकी है, मजदूर तबका इसको मान चुका है कि इसी स्थिति में हमें जीना है? या
देखिए देखिए मजदूर देखिए सबसे एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ स्पष्ट, जो है मजदूर किसके बेस पे लड़ता है? मजदूर लड़ता है अपने सीनियर के लोगों के लिए, यूनियन के ऊपर जो बड़े लोग बैठे हैं वो भी सरकार से मिले हुए हैं, स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे जो बैठे हैं वो भी सरकार के नुमाइंदे हैं, वो सामने आमने ये सब एक मजदूर को डाइवर्ट करने की बात है। अगर वो लोग लड़ते तो ये नौबत नहीं आती, वो लोग दिखाई के लिए लड़ रहे हैं, मजदूर को आगे कर रहे हैं, 100-200-500 मजदूर बाहर हो जाते हैं, फिर लेवल पे आगे 2-4-20-50 लोगों का समझौता कर रहा चले जाते हैं, फिर जो समझौता होता है उसको सरकार नहीं मानती, मैनेजमेंट नहीं मानती, फिर लगे आए केस पे से लगे रहो, धमकाया जाता है उनको, पुलिस उठा के पीटती है, बंद कर देती है, झूठे मुकदमे फंसा दिए जाते हैं, और जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे होते हैं उन वो लोग यूनियन के जो टॉप लोग हैं उनसे सेटिंग कर लेते हैं, ऊपर से दबाव आ जाता है उनके पास, कोई हेल्प नहीं हो पाती, तो मजदूर तो आवाज़ कहाँ उठाए यूनियन के लिए, यूनियन के लिए जो टॉप लीडर हैं वो टॉप लीडर बिक जाते हैं। तो 2013 में अगर मैं डाइकिन की बात करूं तो एटक से जो हम एफिलेटेड थे तो एटक वाले वो सब बिक गए, तो मजदूर बाहर हो गए, 800 कॉन्ट्रैक्ट उचल मजदूर बाहर हो गए, 200-300 लोग परमानेंट बाहर हो गए, त्रिपक्षीय समझौता हुआ उसमें 70 लोगों का कुछ हुआ कि इनको ले लेंगे, उनकी कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, सबको बाहर कर दिया।
तो ये इस भरोसा टूटने के ही वजह से यूनियन टूट गई है।
हाँ, और ये भरोसा टूटने की वजह से भरोसा नहीं बना पा रहे हैं ये लोग, इस कदर मैनेजमेंट के हाथ बिक जाते हैं कि बस ये चाहता है कि यार आप जो मिल रहा है उसी में समर कर लें, जो मिल रहा है वो उसी में काम चला लें, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारा पक्ष में कोई लेने वाला नहीं है, तुम्हारे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है, एक बार आते हैं यहाँ पे मीटिंग करके चले जाते हैं, दोबारा तो तुम जेल में जा रहे हो, पुलिस मार रही है, कुछ मार रही है, तो लेवल की जो यूनियन चला रही है वो कुछ किसी को कोई मतलब नहीं है, तो मजदूर को तो भड़काया जा रहा है कि तुम लड़ो, पीछे हम तुम्हारे खड़े हैं, पीछे मुर्गे हम जब देखते हैं कोई नहीं है। 2013 से और अभी 21 तक 7-8 साल हो गए, ये मेरा नाम यही हो रहा है। बाकी कंडीशन आप देख लो, मारुति का देख लो, हीरो का, होंडा का देख लो, लोगों की मारुति के लोगों की इस कदर आ रहा था, जेल में बंद हो गए, मर रहे हैं वो, बीमार हैं, जमानत नहीं हो पा रही उनको।
तो यूनियन का अस्तित्व तो खुद ही खतरे में है, क्योंकि उसने अपना भरोसा खो दिया है। आपके कहने का मतलब ये है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, और डायरेक्ट कानून जैसा भी बनाना चाहे गवर्नमेंट बना सकती है, क्योंकि यूनियन का जो पावर था, जो मजदूर जो उसका पावर था, वो धीरे धीरे उनके साथ छोड़ चुका है।
हाँ, ये सच है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अगर वो लोग ये करें कि हाँ कि हम तैयार हैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने को तैयार हैं, तब तो ऐसा हो जैसे देश के आम नागरिक एक होकर कंधे से कंधा लड़ा के लड़े हैं, इसलिए देश आजाद हुआ। पर ऐसी कुछ कंडीशन होती तो कुछ मजदूरों का शोषण बंद होता है, वो लोग नहीं लड़ रहे।
धन्यवाद कॉमरेड, आप सुन रहे थे कानूराम कॉमरेड डाइकिन एसी से, नीम राणा राजस्थान से। श्रोताओं, आप भी अगर कोई बात, कोई खबर, कोई प्रतिक्रिया इस पे देना चाहें तो खबर सुनने के दौरान नंबर 3 दबाकर अपनी बात साझा करें। धन्यवाद।